ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासम्। ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग श्रीमद् भागवतम से श्रवण करेंगे, और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि श्रवण भक्ति के आचार्य श्रील प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान को प्रार्थनाओं के माध्यम से शांत करना इस अध्याय का नाम है और ये विषय है। तो यहाँ पर आज के श्लोक में, जो कि 41वां श्लोक है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। श्लोक दोहराएंगे। एवं स्वकर्म पतितं भववैतरण्या मन्योन्य जन्म मरणासन भीतभीतं पश्यञ्जनं स्वपर विग्रह वैरमैत्रं हन्तेति पारचर पीप्रहि मूढमद्य। एवं स्वकर्म पतितं भववैतरण्या, एवं स्वकर्म पतितं भववैतरण्या मन्योन्य जन्म मरणाशन भीत भीतम्। मन्योन्य जन्म मरणाशन भीत भीतम् पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैरमैत्रम्। पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैरमैत्रम् हन्तेति पारचर पीप्रहि मूढमद्य। हन्तेति पारचर पीप्रहि मूढमद्य। पढ़िए। एवं स्वकर्म पतितं भववैतरण्या मन्योन्य जन्म मरणाशन भीत भीतम् पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैरमैत्रम् हन्तेति पारचर पीप्रहि मूढमद्य। वैतरण्या जन्म मरणाशन भीत भीतम् पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैरमैत्रम् हन्तेति पारचर पीप्रहि मूढमद्य। एवं स्वकर्म पतितं भववैतरण्या मन्योन्य जन्म मरणाशन भीत भीतम् पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैरमैत्रम् हन्तेति पारचर पीप्रहि मूढमद्य। माताजी, एवं स्वकर्म पतितं भव वैतरण्या मन्योन्य जन्म मरणाशन भीत भीतम् पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैरमैत्रम् हन्ते दिपार चरपी प्रहिमूण मध्य। माताजी शब्दार्थ एवं इस तरह स्वकर्म पतितम भौतिक अपने भौतिक कार्यकलापों के फल के कारण पतित हुआ भव अज्ञान जगत जन्म मृत्यु जरा व्याधि की तुलना में वैतरण्याम वैतरणी नदी में जो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के द्वार के समक्ष बहती है अन्य अन्य एक के बाद एक जन्म जन्म मरण मृत्यु आसन विभिन्न प्रकार का भोजन भीत भीतम अत्यधिक भयभीत पश्यन देखते हुए जन्म जीव को स्वह अपना पर पराया विग्रह शरीर में वैरमैत्रम मित्रता तथा शत्रुता मानते हुए हंत हाय इति इस तरह पारचर मृत्यु की नदी के दूसरी ओर स्थित आप पीप रही कृपया हम सबों को इस घातक स्थिति से बचा लें मूढ़म आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हम सभी मूर्ख हैं अद्य आज क्योंकि आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। हे भगवान आप सदैव मृत्यु की नदी के दूसरी ओर उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। दरअसल हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए न केवल मुझ पर अपितु उन सबों पर जो कष्ट उठा रहे हैं और अपनी अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। दोहराएंगे हे भगवान आप सदैव मृत्यु की नदी के दूसरी ओर उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। दरअसल हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए न केवल मुझ पर अपितु उन सबों पर जो कष्ट उठा रहे हैं और अपनी अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। तात्पर्य शुद्ध वैष्णव प्रहलाद महाराज भगवान से न केवल अपने लिए अपितु अन्य समस्त पीड़ित जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं। वैष्णवों की दो कोटियां हैं, भजनानंदी तथा गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी केवल अपने निजी लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन गोष्ठ्यानंदी अन्य सबों को कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाना चाहते हैं, जिससे उनकी रक्षा हो सके। ऐसे मूर्ख जो बारंबार जन्म तथा मृत्यु को एवं भौतिक जीवन के अन्य कष्टों को देख नहीं पाते, इसके बारे में तनिक भी आश्वस्त नहीं रह सकते कि अगले जन्म में उन पर क्या बीतेगी। निस्संदेह ऐसे मूर्ख भौतिकता ग्रस्त धूर्तों ने जीवन की अनुत्तरदायी शैली बना ली है, जो अगले जीवन के बारे में सोचते ही नहीं। वे यह नहीं जानते कि अपने ही कार्यकलापों के अनुसार मनुष्य को 84 लाख योनियों में से चुनकर शरीर प्राप्त होता है। भगवद गीता में इन धूर्तों को दुष्कृतिनो मूढ़ा कहा गया है। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, ऐसे अभक्तों को पाप कर्मों में लगना पड़ता है, इसलिए वे मूढ़ अर्थात मूर्ख तथा धूर्त हैं। वे ऐसे मूर्ख होते हैं कि जिन्हें उन्हें यह भी ज्ञात नहीं रहता कि अगले जीवन में उन पर क्या बीतेगी। यद्यपि वे सब तरह के प्राणियों को घृणित वस्तुएं खाते देखते हैं, यथा सूकरों को मल खाते, मच्छरों को सभी प्रकार का मांस इत्यादि खाते, और इस तरह की व्यर्थ की वस्तुएं खाने के कारण अगले जीवन में वे अत्यंत घृणित वस्तुएं खाने के लिए बाध्य होंगे। एक वैष्णव ऐसे घृणित जीवन से सदैव भयभीत रहता है और ऐसी विभत्स दशा से उबरने के लिए वह अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाता है। भगवान उन पर दयालु हैं, अतएव वे उनके हित के लिए प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। हे भरत वंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य हो जाता है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवद गीता 4:7 श्लोक है। भगवान पतितात्माओं की सहायता के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं, लेकिन वे मूर्ख तथा धूर्त होने के कारण कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं करते और कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते। इसीलिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं, किंतु वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उपदेश करने के लिए भक्त रूप में आते हैं। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। अतएव मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का निष्ठावान दास बने। आमार आज्ञाए गुरु हैया तार ए देश। चैतन्य चैतन्यमृत मध्य लीला 7 का 128 पर मनुष्य को गुरु बनना चाहिए और सारे विश्व में भगवद गीता की शिक्षाओं का मात्र उपदेश देकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए। जय श्री श्री राधा रास भई ललिता सखी विशाखा सखी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत स्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः नैतन्मनस्तव कथासु विकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भैषणार्तम तस्मिन् कथम तव गतिम विमशामि दीनः जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिश्नोऽन्यतस्त्वगुदरम् श्रवणम् कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलदृक् क्वच कर्मशक्ति बह्व्यः सपत्न्यैव गे पतिम् लुनन्ति वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानाम् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। एवं स्वकर्म पतितं भववैतरण्या मन्योन्यजन्म मरणाशन भीतभीतं पश्यन् जनं स्वपर विग्रह वैरमैत्रं हन्तेति पारचरपी प्रहिमूढमद्य। हे भगवन्, आप सदैव मृत्यु की नदी की दूसरी ओर उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। दरअसल हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सबों पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहेतुकी कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रहलाद महाराज प्रत्येक स्तुति में कुछ न कुछ प्रत्येक विशेष बात रहती है, अलग अलग प्रकार की स्तुतियां हैं। प्रहलाद स्तुति में, ब्रह्मा जी की स्तुति में भी अलग अलग बातें हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज की स्तुति बड़ी ही दिव्य है। एक उच्चतम जो भक्त की स्थिति होती है उस पर भी उन्होंने स्मरण करके स्तुति किया, एक सामान्य स्तर पर आकर के हम लोगों के लिए भी स्तुति के, जैसे पिछले दो श्लोकों में नैतन मनस्तव कथा से विकुंठनाथ, उनका मन तो ऊंची अवस्था में है और उनका मन खूब कथा में लगता है, वो तो माँ के गर्भ से ही सीख रहे हैं और सुन रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कि हम भले प्रतिदिन कथा सुनते हैं, लेकिन फिर भी अभिलाषा रहनी चाहिए कि सच में हमारा मन नहीं लगता, फोर्स फुली लगाना पड़ता है। वैसे भी साधन अवस्था में मन को लगाना ही पड़ता है, जब व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो मन अपने आप लगता है, फिर तो हटाने से भी नहीं हटता है। तो यहां पर प्रकृत संदर्भ में नवधा भक्ति के जो प्रमुख आचार्य श्रील प्रहलाद महाराज की जो स्मरण भक्ति है उसकी चर्चा में यहाँ पर जो सातवां स्कंद के संपूर्ण स्मरण के ऊपर है, इस सातवें स्कंद में जो स्मरण आया है थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे, फिर इस श्लोक को समझाएंगे कि वस्तुतः जो श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये तीन ही ऐसी चीजें हैं जो साक्षात भक्ति का अंग है। अन्य बहुत सारी भक्तियां हैं 64 प्रकार की, लेकिन उनमें हो सकता है बहुत सारे दोष भी आ जाएं, जैसे अर्चन मार्ग में शुद्धि अशुद्धि की समस्या रहती है, बहुत कई बार नहाओ, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन श्रवण कीर्तन और स्मरण ऐसी चीजें हैं जिसमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए नतत्र देश नियम काल नियम, वहां पर कोई देश नियम नहीं, काल नियम नहीं, कभी भी किसी भी समय श्रवण कर सकते हैं भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, सेवा परिकर का, लीला का, और स्मरण भी कर सकते हैं और कीर्तन भी कर सकते हैं। कीर्तन इसलिए कि अशुद्ध को शुद्ध बनाने वाला है। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चैतन्य में एक बात बोली कि श्रवण के विषय में, स्मरण के विषय में, कि स्मरण मनेर प्राण, ये स्मरण भक्ति है, ये मन का प्राण है। प्राण जैसे हमारे शरीर और इंद्रियों में से यदि प्राण निकल जाए, पंच प्रकार की वायु की जो प्रमुख प्राण वायु है जो हृदय में रहती है, यदि वो प्राण निकल जाए तो शरीर कैसा हो जाता है? अचेतन हो जाता है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मनेर स्मरण प्राण, मन का स्मरण प्राण है। प्राण हम अभी यहां पर कीर्तन कर लिए, श्रवण कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे? उसकी नित्यता बनाए रखने के लिए स्मरण आवश्यक है हर समय। जो दर्शन किया भगवान के रूप का, यहां आधे घंटे खड़े होकर, एक घंटे खड़े होकर, उसका मतलब क्या? जो रिक्त स्थान पर गए तो अकेले में उसका चिंतन किया कि भगवान ऐसे हैं, ऐसा श्रृंगार है, उनका ऐसा रूप है, वही स्मरण है। तो स्मरण में, क्योंकि स्मरण भक्ति सदा की जा सकती है, हो सकता है किसी व्यक्ति का कान खराब हो जाए, सुन ना पाए, फिर क्या करेगा? हो सकता है किसी की जीभ काम ना करे, तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि भगवान ने हमको जीभ नहीं दिया तो स्ट्राइक करेंगे, तो हम तो भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, चाहे जीभ रहे, चाहे कान रहे और चाहे ना रहे, लेकिन मन तो है स्मरण करने के लिए। और स्मरण करने के लिए मन ऐसी इंद्रिय है जो पांचों इंद्रियां ना रहे तब पर भी अकेला सब काम कर सकता है, पूर्व संस्कारों से। इसीलिए, लेकिन वर्तमान में श्रवण करने की आवश्यकता रहती है उस भक्ति को जगाने के लिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने, जीव गोस्वामी ने लिखा है कि जो संकीर्तन है, मन भगवान को स्मरण करने के लिए मन की शुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन संकीर्तन करने के लिए मन चाहे शुद्ध रहे और चाहे न रहे, वो चेतो दर्पण मार्जनम है, वो शुद्ध कर देगा। ऐसा स्मरण की बहुत महिमा है, क्योंकि स्मरण करते करते देखिए प्रहलाद महाराज, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य हैं तो केवल कीर्तन के कई भगवान को स्मरण किए ही नहीं। परीक्षित महाराज श्रवण के आचार्य हैं तो स्मरण किया ही नहीं, भागवत में प्रमाण है उसने स्मरण किया, बारहवें स्कंद में लिखा है। तो श्रवण कीर्तन स्मरण, ये तीनों प्रकार की भक्ति एक साथ करने के लिए आदेश है कि जिस समय भगवान का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, यदि भगवान सामने हैं तो उनके रूप को देखा जाए, यदि सामने नहीं है ऐसे रिक्त स्थान पर बैठे हैं जहां पर भगवान का विग्रह नहीं है, वहां पर भगवान को याद स्मरण करते हुए कीर्तन किया जाए। और नहीं तो मन क्या करेगा, कहीं और यहां वहां जाएगा, जीभ चलती रहेगी और मन रसगुल्ला खाने के लिए घर में दुनिया में घूमता रहेगा, और भगवान के जो रूप देखा हुआ उस पर यदि लगा देंगे तो रुक जाएगा। तो स्मरण को, इस स्मरण भक्ति में, स्मरण भक्ति में भी सबसे पहले भागवतम में कहा गया है कि जो साधारण स्मरण है वो केवल मन को विषयों से हटा करके भगवान में लगा देना, वो एक साधारण स्मरण है बस। विशिष्ट स्मरण के लिए कहा गया है नाम स्मरण, रूप स्मरण, गुण स्मरण, लीला स्मरण, परिकर सेवा स्मरण, ये मुख्य स्मरण है। भगवान ने स्वयं उद्धव से 11वें स्कंद के 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा कि सर्वतो मना आकृष्य मय्यद्धा आवेश्यते यथा, कि साधारण स्मरण क्या है कि सब जगह से मन को हटा करके मुझ में लगा देना। लेकिन ये तो एक बात है, मन को लगाने के दो उपाय हैं, एक तो विषय से हटा करके भगवान में लगाना, और एक बार क्या होता है मन विषय में ही जाता है तो उसको जाने दो, वहीं पर श्री कृष्ण को खड़ा करना। जैसे एक मदाड़ी होता है बंदर को कैसे कंट्रोल करता है, पहले एक रस्सी बनाता है 20-30 मीटर की, उस रस्सी से वो क्या करता है कि उस उतने में ही उसको नचाता है, फिर बाद में 25 मीटर की रस्सी में नचाता है, फिर 20 मीटर की, फिर 15 मीटर, फिर 5 मीटर में आकर के सारा गेम उसके बाहर वो बंदर नहीं जाता। ऐसे ये जो मन है इस जहां जाए, क्योंकि मन को खींचेंगे तो हो सकता है कि भगवान में न लगे, यहां से खींचे और यहां भाग गया। लेकिन यदि मन जहां जा रहा है जाए, और ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर भगवान को दर्शन करें। और ये दर्शन, इसीलिए जो चेतन चेतन में तुम्हें कहा गया कि सर्वत्र राधा कृष्ण की स्फूर्ति होती है, ये ऐसे नहीं होती है, ये अभ्यास करने से होती है। कोई भी स्त्री है, पुरुष का दर्शन एक बार किया, दोबारा कर रहा है, बार बार मन जा रहा है, उसमें एकदम से ध्यान में आना चाहिए कि भगवान को देखें, राधा रास बिहारी का चिंतन करें। तो मन जाए कोई बात नहीं, कि वहां पर दर्शन कर लें। और दूसरा तरीका भगवान बता रहे हैं कि सर्वता मन आकृष्य मई आवेश्यते यथा, मुझ पर लगा दे। मुझ पर लगाना भक्ति हो गई, स्मरण भक्ति। तो इस प्रकार से ये एक उपाय है। नाम स्मरण के लिए शास्त्रों में लिखा है कि हरिर नाम जप्यम गेयम ध्येयम निरंतरम, कि हरि नाम केवल सदैव जपना चाहिए, गाना चाहिए और उसका स्मरण किया जाना चाहिए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जावाली संहिता का श्लोक है। उसके बाद रूप स्मरण की बातें बहुत सारी भागवत में, बहुत सारा रूप स्मरण के विषय में है। कई बार क्या होता है कि नाम रूप गुण लीला एक ही वस्तु है, लेकिन फिर भी नाम के शब्द रूप में है, तो हो सकता है उसमें मन न लगे, लेकिन रूप में ज्यादा मन लग सकता है। नाम क्या है कि शब्द रूप में है, तो शब्द रूप में सब एक ही चीज है, लेकिन फिर भी नाम का आप कैसे ध्यान करेंगे, उसका कोई रूप नहीं, तो आप कहेंगे हरे ऐसा अक्षर बना हुआ, ऐसा आकार का, तमिल है, तेलुगु है सब। लेकिन कृष्ण की आकृति का स्मरण करेंगे तो ज्यादा आपको आनंद का अनुभव होगा और जल्दी मन नियंत्रण में आएगा। तो भागवतम में रूप स्मरण को कहा गया है, 12वें स्कंद के 12वें अध्याय के 55वें श्लोक में, कुछ लोग 54वें श्लोक किसी किसी बुक्स में है, कहते हैं कि अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो हो क्षिणोत्य भद्राणी समचतनोति। कहते हैं कि जो भगवान के चरणों का स्मरण है वो समस्त अभद्रों को, अमंगल को नष्ट करने वाला है और कल्याण का विस्तार करने वाला है। और इतना ही नहीं, कहते हैं सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विराग विराग युक्तम। कहते हैं कि इतने में काम नहीं बनेगा, कहते हैं कि सत्वस्य शुद्धिम, उस सत्व की माने अंतःकरण को शुद्ध करने वाला स्मरण है और भगवान की भक्ति देने वाला है। इतना ही नहीं, उसमें वो कैसी भक्ति, समस्त प्रकार की आसक्तियों को दूर करने करके देने वाली भक्ति उत्पन्न होती है। सुदामा की पत्नी ने तो इतना कह दिया कि जो भक्त स्मरता पाद कमलम आत्मानम अपि यच्छति, जो भगवान के चरणों का ध्यान करता है उसको कहती है कि उसको तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। किम त्वर्थ कामान भजतो नात्यभिष्टानत जगत गुरु, भागवत 10:80-11 में जब सुदामा जी को उनकी पत्नी प्रेषित कर रही थी कि जाइए भगवान के पास कुछ मांग करके लाइए, बड़ी अवस्था हमारी खराब है, तब वो थोड़ा सा लालच दे रहे हैं सुदामा जी को और कहते हैं कि पाद कमलम स्मरता आत्मानम अपि यच्छति, यदि कोई भगवान के चरणों का ध्यान करता है तो उसको भगवान अपने आप को दे देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अर्थ धर्म काम मोक्ष की इच्छा से भी करता है उसको भी दे देते हैं अपने आप को। लेकिन ये बात तो गड़बड़ है, कैसे कर्मी व्यक्ति को दे देंगे भगवान बिना भक्त बने? भगवान केवल भक्तों को देते हैं जो उच्च अवस्था में पहुंच चुके हैं। पहले ही दे देंगे सारा सामान संसार का तो फंस जाएगा। जैसे आपको दूध दिया मक्खन बनाने के लिए, आपने दूध में पहले ही पानी मिला दिया तो मक्खन घी कुछ नहीं बन पाएगा, न दही बनेगी। और यदि वो जो दूध है प्योर रहे और उससे दही बनाइए मक्खन बनाइए और फिर पानी में मिलाइए तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, पानी अलग और मक्खन अलग उतर आएगा। तो भगवान पहले भक्त को ठोक करके पूरा पक्का कर देते हैं कि अब ये माया मैंने, उसकी माया निवृत्ति कर देते हैं, उसके बाद सारा ऐश्वर्य देते हैं, जैसे सुदामा को दिए, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सभी को दिए। नहीं तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, मिठाई की दुकान में कोई जूता चप्पल मांगेगा तो नहीं मिलेगा। तो भगवान दिव्यानंद है, परमानंद, अनंत आनंद है, से युक्त है, और उनके पास जाकर कोई संसार का तुच्छ जो क्षणिक आनंद है उसको मांगेगा तो कैसे देंगे। सूर्य के सामने अंधेरा नहीं रह सकता है, जहां अंधेरा वहां सूर्य नहीं रहता है। तो इसीलिए, लेकिन सूर्य जो अंधेरे का ज्ञान है वो भी बिना सूर्य के नहीं होता है, ये भी बात याद रखना चाहिए। तो खैर वो तो दार्शनिक बात है, लेकिन इतना स्मरण रखना चाहिए कि भागवत कहता है कि रूप स्मरण, जो प्रहलाद महाराज ने स्मरण भक्ति का स्थापना की, या उसके संदर्भ में बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति है। गरुड़ पुराण में तो यहां तक कह दिया है कि यदि एकस्मिन अपि अतिक्रांते मुहूर्ते ध्यान वर्जिते, यदि जिस भक्त का एक क्षण भी भगवान के ध्यान से, स्मरण से यदि चला जाए तो उसको रोना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का धन लुट जाता है तो रोता है, ऐसे ही रोना चाहिए, तब स्मरण सिद्ध होता है। त्रिभुवन विभव हेतव अप्यकुंठ प्यजित, कहते हैं स्मृत स्मृता स्मृता अर्जित, कहते हैं कि भागवत में कवि हरि बताते हैं कि तीनों भुवनों का किसी व्यक्ति को यदि संपत्ति दे दी जाए फिर भी वो भगवान के चरण के स्मरण से च्युत ना हो, वो उत्तम भक्त है। 11:52 में तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी रूप स्मरण है। इसी प्रकार से केवल रूप इतना अच्छा नहीं भगवान का, जो लीला स्मरण है जिससे सुखदेव गोस्वामी स्वयं आकृष्ट हो गए थे, भागवत में है ना 12वें स्कंद के 12वें अध्याय के 68वें श्लोक में, किसी में 69 लिखा है कि स्वसुख निभृत चेतास तद विदस्तान्य भावो प्यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस तदीयम व्यतनुत कृपया यस्तत्व दीपम पुराणम तम व्यास सूनम, कहते हैं अखिल ब्रज नगनम व्यास सूनम नतोस्मी। सूत गोस्वामी नमस्कार करके कहते हैं कि जो निजानंद में आत्माराम थे लेकिन भगवान के विषय में सुना, स्मरण किया उसका लीलाओं का और आकृष्ट हो गए, ऐसा लीला स्मरण है। गए थे ना वेद व्यास जी ने दो शिष्यों को भेजा था, तो बरहा पीड़म श्लोक जब बोला भगवान के लीला के विषय में तो उनको सारी लीलाएं धीरे धीरे करके स्फुरित होने लगी और उन्होंने कहा और कहां है ये श्लोक। तब फिर जाकर के अध्ययन किया 4 साल भागवतम का वेद व्यास जी के पास में, तब 16वें साल में भागवत की कथा किया। तो कहते हैं कि इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी को भी वो रूप लीला स्मरण आ गई। सबको स्मरण नहीं आती है रूप लीला जो भगवान के, साधारण नहीं है, लेकिन नाम स्मरण और जो भगवान के रूप का ध्यान है साथ साथ किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का स्वयं मत है, भागवतम में 2 जगह उन्होंने कहा 2:1:5 में कि तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत तथा भयम्, कि व्यक्ति को यदि कल्याण चाहिए तो भगवान जो सर्वात्मा है सभी के प्राण है उन भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना ही चाहिए। और 2:2:36 में भी इसी प्रकार की बात बोले हैं, और भागवत के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय में भी ये श्लोक आया है, 3 बार पूरे भागवतम में है कि श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मण, प्रबुद्ध योगेश्वर बताते हैं कि श्रवण कीर्तन और ध्यान माने स्मरण ये भगवान का अवश्य करना चाहिए, 3 इनको कभी नहीं छोड़ना, यही 3 प्रकार की मुख्य भक्ति है जो फ्री में की जा सकती है, बिना धन संपत्ति के भी की जा सकती है किसी भी समय में। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्चना आदि का निषेध है, लेकिन सर्व सामान्य में जो जीव गोस्वामी ने लिखा कि जो साक्षात भक्ति और श्रवण कीर्तन स्मरण है। तो इस प्रकार से नाम के बाद रूप गुण लीला इनका विकास होता है अंतःकरण में धीरे धीरे। तो यहां पर श्रवण के आचार्य प्रहलाद महाराज, बहुत सारी बातें हैं इसमें कहने के लिए, लेकिन आप लोग इतना ही समझिए कि तीनों चीजें तीनों एक साथ किया है सबने, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब कीर्तन किए उसके बाद फिर क्या किए, फिर स्मरण किए, अन्य समय में जा जा करके जो भगवान की लीलाएं थी उनका स्मरण करते थे,
वो तो सात दिन का था कि परीक्षित महाराज ने भी श्रवण किया और श्रवण करने के बाद समाधि में बैठ गए। किसकी समाधि में? केवल सुनना भक्ति नहीं किए, सुन करके स्मरण किया भगवान की लीलाओं का और समाधि लगा लिया और तक्षक आकर के उस समय दंशन किया। तो इस प्रकार से तीनों हैं हर जगह, तो एक एक बता दिया जाता है कि एक एक ने एक एक किया मुख्य आचार्य के रूप में, लेकिन तीनों ने सभी ने सब कुछ किया। अभी अर्चन करते हैं तो क्या भगवान का नाम का स्मरण नहीं करते हैं? करते हैं, केवल घंटी जलाते नहीं है, भगवान के भी मंत्रों का नाम का उच्चारण करते हैं, स्मरण करते हैं। इसलिए सब जगह सब कुछ है, स्मरण तो सब जगह व्याप्त है। तो इस प्रकार से श्रवण भक्ति स्मरण भक्ति की बात हुई। अब यहाँ पर प्रहलाद महाराज प्रकृत श्लोक में, और इसके जो दो पीछे के श्लोक थे जिनमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बतलाई कि एतन मनः, ये जो हमारा मन है आपकी कथाओं में नहीं लगता है, ये इंद्रियां हैं, दस प्रकार की इंद्रियां दस दिशाओं में हमको दौड़ाती हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति की दस पत्नियां हो तो एक कहे मॉल ले चलो, एक कहे तीर्थ यात्रा में चलो, एक कहे कि हमारे घर मायके ले चलो, एक कहे कहीं और ले चलो, तो दस तरफ से खींचे तो उस व्यक्ति की क्या अवस्था होगी। ऐसे ही हमारा एक मन के साथ हम हैं और हमारी दस इंद्रिय कहती है इसको देखो, फिर कभी कभी इसको सुनो, कभी इसको चखो, इसको छुओ, तो ऐसा करके वो खींचती हैं चारों तरफ। तो हम मन लगाएं तो लगाएं कैसे आपकी कथाओं में? यदि मन स्थिर हो जाए, इंद्रिय हमारी सब एक जगह स्थिर हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, तो हम लगाएं। तो वस्तुतः सभी प्रकार के बंधन और मोक्ष कारण इंद्रियां नहीं है, मन है। भागवतम में लिखा है 3:25-15 में, चेतः खलवस्य बंधाय चात्मनो मुक्तये स्मृतः। कपिल देव बोलते हैं कि जो मन है, चेतः माने चित्त, ये बंधन मोक्ष कारण है। अवंती ब्राह्मण भी कहता है 11:23-43 में कि मनः परम कारणम् आमनन्ति, कि जो मन है ये परम कारण है। सुख दुख है वो, जो सुख दुख जितने प्रकार के हैं इंद्रिय सब का कारण ये मन है। यदि भगवान में लग जाए तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं लगता है। तो यहां पर इसीलिए वैसे भी भगवान मन के आइडियाज को नोट करते हैं, इंद्रियों के नहीं। हम तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं कि यहां वहां ना जाएं, मन को बाहर के आइडियाज को नोट नहीं करते भगवान। अंत इंद्रिय में हम क्या चाहते हैं, हम सच में कृष्ण को चाहते हैं कि माया को चाहते हैं, विषयों को चाहते हैं, वो ये देखते हैं। ऐसे जीव बैठा अंतःकरण में तो देखते हैं कि हाँ ये आ रहा है, और फिर थोड़े दिन बाद चला जाता है विषयों में। तो भगवान वो आइडिया नोट करते हैं मन के, इंद्रियों के आइडियाज नोट नहीं करते। इस संसार में भी इंद्रियों के आइडिया को नोट नहीं किया जाता है, और तभी तक किया जाता है जब तक सच्चाई न पता चल जाए। यदि आपने किसी को धोखा दिया है और वो व्यक्ति आपको नहीं जानता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ जो बोला है वाणी से वो ये झूठ बोला है, अंधा है, इसके कुछ और चल रहा है और बाहर से कुछ और है, तो हो सकता है कुछ दिनों तक आपकी बात मानकर कोई व्यक्ति कहा ये मेरा बड़ा शुभ चिंतक है, लेकिन जिस दिन सच्चाई पता चलेगी आप मन से उसका अहित चाहते हैं तो वो व्यक्ति भी आपसे घृणा करेगा। तो संसार भी वास्तव में मन की बात को ग्रहण करता है। होली में देखिए आप किसी पर रंग डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, कोई बुरा नहीं मानता, क्यों? तो मजाक है, मन से नहीं किया है, हमारा अहित नहीं चाहता है। जज भी यदि कोई किसी की हत्या कर दिया तो 302 का केस यदि पागल है तो नहीं लगता है, कहते हैं दिमागी हालत ठीक नहीं है, मन से नहीं किया है, ऐसे ही चला दिया होगा धोखे से। तो जब संसार मन की बात को समझता है, लेता है, तो भगवान क्यों नहीं लेंगे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने केवल कान को लगाया, सबसे पहली भक्ति है मन से, और मन प्लस श्रवण इंद्रिय, मन प्लस वाग इंद्रिय, मन प्लस अन्य अन्य इंद्रियों को जोड़ना है। अब मन ही नहीं है आपके साथ में, आप कीर्तन गा रहे हैं जीवा से, हरे कृष्णा आप बोल रहे हैं, और आपका मन कलकत्ता के रसगुल्ला खाने में लगा हुआ है, क्या टेस्टी था, बहुत यहां से चल रहा है और ध्यान पूरा वहां है, तो आप भगवान के साथ कनेक्ट नहीं है इसका मतलब। इसीलिए मन के साथ जीवा इंद्रियों को, कर्ण इंद्रियों को लगाना है। प्रारंभिक अवस्था में कह देते हैं कैसे भी करो, लेकिन वास्तव में कैसे भी करो कैसे होगा, ये साधना है। कुदाल है जिससे मिट्टी को खोदते हैं, यदि उसको ऐसा उल्टा उल्टा पटकेंगे तो कभी मिट्टी नहीं खुद सकती, कभी पानी नहीं आएगा। तो यदि साधना ठीक ठीक नहीं होगी तो कैसे भगवत भाव और प्रेम उदित होगा, कभी नहीं हो सकता है। प्रारंभ अवस्था में भक्ति उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहा जाता है कैसे भी कर लो, लेकिन जब करने लगेंगे तो उसमें रस आएगा धीरे धीरे, फिर बोलेंगे ठीक से करो, नाम अपराध मत करो, नाम अपराध करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, माने ध्यान पूर्वक न करना। वो क्या है, जैसे कोई कुत्ता मर गया यदि किसी कुएं में, तो जब तक उस कुत्ते को नहीं निकालेंगे तो चाहे जितना जल निकालते जाएं अशुद्ध जल ही आएगा। तो ऐसे अपराध युक्त फिर नाम मतलब बिना ध्यान के नाम जपना स्मरण करना, वो क्या अपराध युक्त हो जाएगा। तो फिर इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते करोड़ों जन्म तक ऐसे नाम लेते रहोगे तब पर भी कृष्ण पद में प्रेम प्राप्त नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु ने दो प्रकार की भक्ति मुख्य बोली है, एक होती है सासंग भक्ति, एक होती है अनासंग भक्ति। अनासंग भक्ति मतलब जो केवल इंद्रियों से की जाए वो अनासंग है, माने मन का संयोग नहीं है, ऐसी कर रहे हैं जैसे तैसे। और एक होती है सासंग भक्ति मतलब मन के साथ, मतलब आप मन के साथ होते हैं ना हमेशा, हम जो जीवात्माएं हैं हम हमेशा मन के साथ होते हैं और इंद्रियों के साथ अपने आप को संयुक्त करते हैं विषयों के भोग के लिए, तो ऐसे ही भगवान में करना है। तो इस प्रकार से ये भक्ति की बात हुई। अब यहां पर कहते हैं कि एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरण्यम, जीव इस संसार में अपने कर्मों के कारण से घिरा पड़ा है, कोई किसी का कारण यहां पर नहीं है, और न कोई यहां पर लिखा है कि कोई किसी के न सुख का न दुख का कोई भी कारण नहीं है, जीवात्मा स्वयं है। और इस बात को भी भागवतम में दूसरे प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि जीवितम मरणम जंतो हो, कहते हैं कि जीवितम मरणम जंतोर गति ही प्रदाता सुख दुखयो हो, कहते हैं कि इस संसार में जन्म और मरण और गति सब, कोई भी व्यक्ति इस संसार में किसी का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों को करता है, भगवान के द्वारा जो शक्ति प्राप्त है उसके द्वारा जो कर्म करता है अच्छे बुरे उससे उसको जन्म मिलता है। कह देते हैं कि तुम्हारे कारण से मेरा ये नुकसान हो गया, उसके कारण से ये नुकसान हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। नान्या प्रदाता सुख दुख है, वो भागवत 12:6, 25 और 26 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी के सुख और दुख को देने वाला नहीं है। ये तो कुबुद्धि है, ऐसा सोचती है कि सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा अहम करोमि व्यथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे गथितो हि लोकः। किसी पुराण में श्लोक जीव गोस्वामी आदियों ने कोट किया है, कहते हैं कि परस्य माने दूसरे के कोई सुख दुख को देने वाला कोई नहीं है। कोई कहता रहे उसके कारण से इसको दुख हुआ, मेरे को दुख हुआ, तो कहते हैं कुबुद्धि रेशा, ये कुबुद्धि है ऐसा विचार करना। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वभाव बनता है और उसके अनुसार वो करते हैं और उनको प्राप्त होता है। कहते हैं कि कुबुद्धि अहम करोमी, मैं करता हूं, ये व्रथा अभिमान है, झूठा अभिमान है। स्वकर्म सूत्रे गति तो ही लोकः, ये ममत्व को अहंत को हटाने के लिए बात बोली गई है कि मैं करता हूं, वास्तव में मैं कुछ नहीं करता हूं। मतलब जैसे जैसे कोयला जलता हुआ है उसको चमीटा चिमटा है वो पकड़ ले और कहता है कि मैंने पकड़ रखा है, और चिमटे को किसने पकड़ा है, हाथ ने पकड़ा है, हाथ अब हाथ सोचता है मैं नहीं रहूं तो चिमटा कैसे काम करेगा। अब हाथ ऐसा सोचता है कि मैंने चिमटे को पकड़ा है, मतलब मैंने कोयले जलते हुए कोयले को पकड़ा है। अब हाथ को बुद्धि कहती है कि तुम मूर्ख हो, तुमने नहीं पकड़ा है, मैं यदि ना बताऊं कि उल्टा पकड़ना है कि सीधा तो कैसे हाथ पकड़ सकते हो, तुम नहीं पकड़ सकते। अब बुद्धि आत्मा कहती है नहीं नहीं नहीं, जो अहंकार है हमारा, मैंने तुमको दिया है वो शक्ति पकड़ने की, जो निश्चय करने की, इसलिए तुमने इसको ऐसा पकड़ा है। अब आत्मा में जो शक्ति है वो कहां से मिली, वो भगवान से मिली। चेतनस चेतना नाम, जितनी भी चेतनाएं हैं आत्माएं हैं सबकी मुख्य चेतना कौन है, भगवान। सब जगह बिजली जैसे पावर हाउस से सप्लाई होती है, सब जगह भगवान सभी आत्माओं की मुख्य चेतना है। उसमें भी जो चेतना है आत्मा में जो आत्मत्व है वो भगवान के कारण से है, स्वतंत्र रूप से नहीं है। इसलिए भगवान जो है प्रयोजक करता है, जीव जो है वो प्रयोज्य करता है। जीव कैसा है, प्रयोज्य, मतलब वो कर्म करने की उसको शक्ति प्राप्त है केवल, बस वो मुख्य कर्ता के रूप में नहीं, मुख्य कर्ता भगवान, लेकिन वो अपने आप को मान लेता है, इसलिए उसको दंड मिलता है अच्छे और बुरे कर्मों का। जैसे पावर हाउस से बिजली सप्लाई होती है और वो बिजली सप्लाई हो गई, अब कोई व्यक्ति कहे बढ़िया हीटर पंखे भी चला सकता है, एसी भी चला सकता है, कूलर भी चला सकता है, कोई कहे नहीं हम तो तार पकड़ लेंगे नंगी तार को, तो जैसे ही वो नग्न तार को पकड़ेगा करंट खा के मर जाएगा। अब वो व्यक्ति कहे कि पावर हाउस वाली गलती है, न वो पावर छोड़ता न मैं पकड़ता, तो ये तो उसकी बुद्धि का भ्रम है। अब बाकी व्यक्ति तो आनंद ले रहे हैं एसी कूलर का, उनका क्या, तो प्रयोग की दृष्टि से है। तो भगवान ऐसे ही समस्त जीवात्माओं में एक समान शक्ति का संचार है, वो जो व्यक्ति जैसा पात्र होता है उसमें वो शक्ति जाती है और वैसे ही कर्म करता है और उसके अनुसार वो सुख दुख भोगता है, क्योंकि वो अपने आप को कर्ता मानने लगता है। यदि वो मान ले कि बस मुझे देह मिला है रथ भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो रथ के लिए जो आवश्यकता है उतना करूंगा बस, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, तो काम बन जाएगा कि ये भगवान ने दिया है, ये मेरा नहीं है। इस बात को यहां पर यही अनुवाद में भी लिखा है कि लोग अपने शरीर को मूर्ख है, मूढ़ व्यक्ति इस शरीर को मान करके ही दूसरों से बैर और मैत्री करता है। यही लिखा है ना, स्वपर विग्रह बैर मैत्रम, और जब इस प्रकार की क्रिया करता है तब दुखी होगा। भागवत में लिखा है ग्यारहवें स्कंद में 18वें अध्याय के 31वें श्लोक में इस विषय में कि जितने भी भक्त हैं साधक हैं कहते हैं कि अतिवादांश दीक्षेत नाव मन्येत कंचन देह मुद्दे से पशुवत वैरम कुरिया न के नचित। भगवान उद्धव से कहते हैं कि देखो 11, 18, 31 में कि इस देह को लेकर, देखो संसार में जितनी भी समस्याएं किस लिए हैं, देह को लेकर के। यदि मैं अपना इस देह को ना मानूं कि ये मैं हूं, मैं भगवान का दास हूं, तो मेरा ध्यान वहीं रहेगा, लेकिन मैं बार बार इसको अपना मान लेता हूं, तो जब मैंने अपना माना तो जो कोई इसको गाली देगा या प्रशंसा करेगा तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, तो समस्या यहीं से प्रारंभ हो जाती है। और भगवान कहते हैं कि अतिवादांश दीक्षेत, एक तो तुम ये शरीर नहीं हो, तो इसीलिए जो अतिवाद है तर्क कुतर्क इनको सहन करो, और नाव मन्येत कंचना किसी की अवमानना अवहेलना मत करो। कहते हैं कि देहम उद्देश्य पशुवत, के देह को उद्देश्य करके पशु के समान वैरम कुरियात न के नचित, कहते हैं किसी के साथ बैर मत करो। हम लोग सब, भगवान ने बोला कि देह को नहीं मानेंगे तो समस्या समाप्त, लेकिन देह को माना और समस्या प्रारंभ। सबसे पहली समस्या यहीं से शुरू होती है कि मैं देह नहीं हूं लेकिन मैं मान लिया। अब भगवान उसी को कहते हैं कि वही मूर्ख है। उद्धव ने भगवान से पूछा कि कह मूर्ख, मूर्ख कौन है, तो भगवान ने बोला कि मूर्खो देहात जभी अहम बुद्धि, जिसने देह में अहम बुद्धि कर लिया कि मैं आई एम दिस बॉडी, वो मूर्ख है, मैं ये शरीर हूं। अब जब मैं ये शरीर ही नहीं तो पंच तत्व का है, तो मैंने इसको माना, तो भगवान बोलते हैं मूर्ख वही है। इसीलिए जितने बड़े बड़े चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे कलेक्टर हो, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी हो, जो अपना परिचय शरीर को लेकर करते हैं भगवान की परिभाषा में, वो मूर्ख है। मूर्खो देहाद्यम बुद्धि 11:19-42 भागवत। इस प्रकार से कहते हैं, और भी सूत गोस्वामी ने भी इसी बात को 12वें स्कंद के 6वें अध्याय के 33वें-34वें श्लोक में कहा है कि सेम एक ही बात कि देह को उद्देश्य करके किसी भी व्यक्ति के साथ बैर मत करो। क्यों बैर न मत करो, कहते हैं कि जो बैर करता है वो भगवत प्राप्ति नहीं करता। 33 में कहते हैं सूत गोस्वामी कि तय तद अधिगच्छन्ति वो विष्णोर यत परमम पदम अहम ममेति दौर्जन्यम नयेषाम देह गेहजम। अब जिसने अपना शरीर माना ही नहीं कि मैं शरीर हूं, तो उसका देह में आसक्ति नहीं, और घर में इससे संबंधित जितने परिवार के लोग दुनिया के उनका भी संबंध नहीं हुआ, तो फिर उनका अहम मम बुद्धि भी नहीं होगी। तो जिनकी ऐसी बुद्धि नहीं होगी, तो सूत गोस्वामी कहते हैं त एतद अधिगच्छन्ति, वो विष्णु का जो परम पद है भगवान श्री कृष्ण का गोलोक, वो वहां उसको प्राप्त करता है। और जिनकी देह में अभिमति है उसी के घर में होगी। मैं जब ये देह ही नहीं हूं तो फिर इससे संबंधित अन्य चीजों में तो आसक्ति होने का सवाल ही नहीं है। पहले मैं ये देह होता तो आसक्ति होती। तो जो जो करते हैं उनके लिए कहते हैं कि इसीलिए किसी भी व्यक्ति को देह को उद्देश्य करके किसी के साथ भी अभेलना और बैर नहीं करना चाहिए। ये भगवान का वचन है और ये सूत गोस्वामी का ही वचन है। और जनरली यही संसार में चलता है। तो इसीलिए यहां पर यही बात बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं उस संसार में गिर गए और स्वपर विग्रह अन्योन जन्म मरणासन भीत भीतम, और बार बार कष्ट उठा रहे हैं इसी कारण से। एक बार यदि जान जाए कि मैं देह हूं, जानना मतलब नहीं, हाँ हम तो ये जान लिए, कई बार सुन लिए लेक्चर में हम लोग कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, लेकिन इसकी फीलिंग कहां करते हैं। अभी कोई हम यहां बैठे हमको कोई गाली दे दे तो हम तुरंत उग्र हो जाएंगे, हमको ऐसा बोल दिया, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। तो ये अभी भी रहता है, इसको बार बार जब व्यक्ति अभ्यास करता है अकेले में यहां वहां मैं तो कृष्ण का दास हूं, तब ये फीलिंग आएगी। जैसे बार बार चिंतन करते करते इस देह को अपना मान लिया, ये केवल चिंतन से ही हुआ है। भगवान उद्धव से कहते हैं 11, 14, 27 में कि विषयान ध्यायतः चित्तम विषयेषु विसज्जते। अरे विषयों का ध्यान किया माने शरीर को अपना माना, फिर विषयों का ध्यान किया, फिर मैं मेरा एक हो गया, बस विषयों में मन लग गया, मन विषयी हो गया। तो उसी प्रकार से जब मेरा चिंतन केवल करेंगे हर समय, मैं कृष्ण का दास हूं, मेरे उनके करना सेवा एकमात्र कर्तव्य है, ऐसा चिंतन जब बार बार होगा तब भगवान कहते हैं मय्येव प्रविलीयते, तब वो मेरे धाम आ सकता है, बस, और दूसरा कोई उपचार नहीं है। तो इसीलिए तो कहते हैं प्रहलाद महाराज, जितने भी लोग हैं इस संसार में इनको देख देख करके बहुत दुखी हो रहा हूं मैं। सब व्यक्ति दुखी नहीं हो सकते, प्रहलाद महाराज हो सकते हैं, जो ऊपर उठ गया वो हो सकता है, बाकी हम लोग तो अपने ही समस्या में हैं। हम तो खुद अपने आनंद को चाहते हैं, इसीलिए कृपा वही कर सकता है, कृपा की वही सोच सकता है जिसको कृपा मिल गई है। बाकी जब तक कृपा नहीं मिली है तब तक जो भी कर्म करेगा या क्रिया दिखाई पड़ेगी उसकी, तब तक कुछ न कुछ आत्म सुख की इच्छा अवश्य रहेगी, रहती है कि नहीं। अभी हम भगवान के यहां कीर्तन करते हैं तो लगता है कि थोड़ा पंखे की हवा लग जाए हमको भी, तो कीर्तन जहां पंखा चलता है वहीं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी आत्म सुख की इच्छा तो रहती ही है। और जब तक ये पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक काम नहीं बनेगा, केवल कृष्ण की प्रीति की इच्छा विद्यमान रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि जितने भी लोग हैं इस संसार में डाल दिए गए हैं, अनादिकाल से डले हैं, एक दिन डले ऐसा नहीं है, एक दिन डले ऐसा मानेंगे तो नियम यह है कि जिसका जन्म होता है, जन्म किसका होता है, जिसका कर्म होता है, और जिसका कर्म होगा उसको जन्म मिलेगा, और जिसका जन्म होगा तो कुछ न कुछ कर्म करेगा, न जातु तिष्ठति अकर्म कृत, वो रह ही नहीं सकता बिना कर्म किए, और जब कर्म करेगा तो पाप पुण्य करेगा तो फिर जन्म होगा। तो इसलिए संसार को सादी नहीं मान सकते हैं कि एक दिन पैदा हुआ, और यदि एक दिन पैदा हुआ तो फिर मुक्त पुरुषों को जो बेचारे भगवान के साथ आनंद में थे उनको लाकर गिरा दिया गया होगा, तो उनके साथ ये फिर नाइंसाफी हो जाएगी, अन्याय हो जाएगा। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि जहां कहीं भी ये बात आती है तो इसका तात्पर्य है, क्योंकि प्रभुपाद ने 34 स्कंद के 24वें अध्याय के 77वें श्लोक में लिखा है कि जो भगवत धाम में जो जीव है वो संतुष्ट है भगवान के साथ में। अब प्रेम का एक लक्षण भी है, नारद जी ने लिखा है प्रेम का एक लक्षण कि कामना रहितम गुण रहितम अविच्छिन्नम प्रतिक्षणम वर्धमानम। वो कैसा है प्रेम भगवान का, प्रतिक्षणम वर्धमानम। चैतन्य चैतन्यमृत में भी है 4वें अध्याय में कि जब प्रेम का बताते हैं कि जब भगवान के सामने भगवान जब भक्त को देखते हैं और भगवान जब भक्त को देखते हैं दोनों, तो जब भक्त भगवान को देख करके उसको इतना आनंद होता है गोलोक में, तो उसको देख करके भगवान की मधुरी में और बढ़ती है, तो जब भगवान की मधुरी में और बढ़ गई तो भक्त और अट्रैक्ट हुआ, तो जब भक्त को ऐसी अवस्था में देखकर फिर भगवान की मधुरी में बढ़ गई, ये बढ़ते बढ़ते जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ता ही रहता है। लेकिन यहाँ का चंद्रमा तो घटते क्रम में भी है, लेकिन जो भगवान की स्थिति वो प्रेम प्रतिक्षणम वर्धमानम, संसार का प्रेम है घटते क्रम वाला है। किसी का बच्चा 5 साल बाद मिला, किसी महिला का बच्चे को पाकर हाँ मेरा पप्पू आ गया रे, खूब जम के गले लगा लेगी, और एक बार गले लगाएगी, 2 बार लगाएगी, 3 बार जा पप्पू खेल गया, ऐसा प्रेम है संसार का। कोई कह चाहे कितने दिन बाद आए, चाहे जितना प्रिय हो, 1 बार 2 बार 3 बार जा खेल कूद के आ, नहीं लगाई रह सकती है उसके साथ, क्योंकि संसार में है ही नहीं वो प्रेम, काम है, स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बस काम तो अंधकार के समान है, प्रेम निर्मल प्रकाश है, उसमें अज्ञान की स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार से, तो इसलिए प्रहलाद महाराज यहां प्रार्थना करते हैं कि उन पर जो कष्ट उठा रहे उन पर कृपा कीजिए। अब यहां प्रहलाद महाराज ने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन रंती देव ने ऐसी प्रार्थना कर दी है कि हे प्रभु, सबके अंतःकरण में मैं स्थित होकर के सबके पाप मिटा दूं, मैंने सबके पाप भोग लूं, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो न्याय विरुद्ध बात हो जाएगी। रंती देव प्रार्थना करते हैं नवमे स्कंद में कि जितने भी प्राणी हैं, जितने संसार के दुखी आत्माएं, वो क्या करें, उनके हृदय में बैठ करके उनका दुख मुझे मिल जाए या मैं उनको मिटा पाऊं, तो ये तो परमात्मा का काम है, ये वो कैसे ले सकते हैं। वेदांत सूत्र में एक सूत्र बनाया वेदव्यास जी ने, 4.4.17 का चौथे अध्याय के चौथे पाद का 17वां सूत्र है कि जगत व्यापार वर्ज्यम, जीव को भगवान अपने 8 गुण दे देंगे लेकिन एक चीज नहीं देंगे, क्या, जगत की सृष्टि पालन से हमारा काम नहीं देते, बाकी अपने बराबर बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जगत एक कचरा मचरा काम थोड़ा अपने भक्त को देंगे भगवान, ये तो गंदा काम है, सूकर कुत्ते को देखना, सबके गंदे संदे आइडियाज को नोट करना, ये तो देखो भगवान हमारे सब फालतू आइडिया को भी नोट करते हैं, कितने कृपालु हैं, तब पर भी कृपा करके मानो दे दिया, जो अति दुर्लभ है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज, लेकिन यहां पर रंती देव, इसलिए जीव गोस्वामी ने लिखा है रंती देव के विषय में कि इनको ऐसी प्रार्थना नहीं है, प्रहलाद महाराज जैसा कर रहे हैं वो भक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन आप परमात्मा का काम नहीं करेंगे, न किसी के हृदय में बैठ के किसी का दुख मिटाएंगे, लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं आप इन पर कृपा करिए, मैं कैसे मिटा सकता हूं, आपकी कृपा मिलेगी इनका सारा दुख चला जाएगा, लेकिन कृपा मिलेगी कैसे, कृपा तो कोई ऐसी संसार की वस्तु है ही नहीं कि मिल जाएगी, तो उसके लिए भागवत में लिखा है 2.7.42 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये शाम सैव भगवान दयेद अनंतः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्वलीकम, कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा कहते हैं भगवान कृपा उस पर करते हैं जो 100% शरणागत है, 1% भी कम होगा तो नहीं, पूरा भगवान ठोक ठोक के देखते हैं बराबर है कि नहीं, 100% हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं ये था माम प्रपद्यन्ते तांस सैव भजाम्य हम, कि जो जैसी भक्ति करता मैं उसको देता हूं, उसी प्रकार से तो जो सर्वात्मना आश्रित पदा, जो भगवान के चरणों में 100% जिसको आत्म सुख की या विषयों से सुख लेने की किंचित भी कामना नहीं है, केवल भगवान की सेवा की कामना है, ऐसा आश्रित हुआ व्यक्ति है, उस पर वो पूरी कृपा दे देते हैं, और बाकी लोगों को, बाकी लोग साधन करते रहे संतों के साथ में, उनकी बात मान के चले, तो जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन हो जाएगी। अब आप देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति थोड़ी सी भक्ति किया तुरंत कृपा मिल गई, कोई व्यक्ति बहुत जन्मों तक भक्ति किया कृपा ही नहीं मिली। अब ध्रुव महाराज को देखिए, 6 महीना किए भजन, भगवत कृपा मिल गई। तो वो कृपा ऐसी है, हमारे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि अंतःकरण की जो शुद्धि है, मतलब भगवान के प्रति कितने परसेंट भगवान मेरे हैं, मैं उनका दास हूं, उनकी सेवा का कितनी तीव्रता है, ये परसेंट के अनुसार बढ़ती है, जिसकी जितनी होगी उतनी जल्दी उसको कृपा मिलेगी। मतलब यदि कोई, देखो हम लोगों को हर बार सुनते हैं हम दास हैं, लेकिन हमको ज्ञान नहीं हो रहा है क्योंकि हमने साधना किया नहीं, इससे ज्ञात होता है। हम भगवान बार बार सुनते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, हम नहीं जाते, पूरी तरह नहीं जाते, कुछ न कुछ कहीं न कहीं अपने विषयों को भोगने की इच्छा विद्यमान रहती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि अभी अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं, इसलिए वो हृदय में वो उपदेश पूरी तरह काम कर नहीं पा रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं ना कि जो जंग लगा हुआ जो लोहा है उसको चुंबक अट्रैक्ट नहीं करती है, जंग जब साफ हो जाएगा आयरन से तब तो उसको पटाख से अट्रैक्ट होगी। अभी यहां पर 10 सुई रख दीजिए नीडल, अभी जिसमें जितनी जंग लगी होगी जो जितनी क्लीन होगी वो चुंबक से उतनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। अलग अलग स्थिति है, जो बिल्कुल साफ होगी जल्दी अट्रैक्ट होगी, धीरे और हिलाने पर हाँ वहां हिल जाएगी, जो थोड़ी आधी आधी है तो आप ऐसे हिलाएंगे तो वहां वो भी हिल जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल क्लीन है फटाक से चिपक जाएगी एक बार में, पास में आते ही चुंबक। ऐसे ही उपदेश सुनते ही कुछ लोगों ने एक बार में भगवान के शरणागत हो गए। अभी तुलसीदास जी को देखिए, उनकी पत्नी ने एक बार कह दिया तुरंत शरणागत हो गए। तुलसीदास जी जब अपने पत्नी के पीछे पीछे गए तो उनके घर में नीचे छत से जब झूल गए तो सांप था मोटा वाला, उस बड़े से सांप को पकड़ के इतने काम में आसक्त थे, इतने उसके चिंता में मग्न थे कि उस सांप को भी नहीं देखा और झूल गए उसे और नीचे गिर गए, वो नीचे आ गए छत से। तब उनकी पत्नी ने देखकर कहा अरे जितनी आसक्ति मुझमें यदि श्री राम में हो जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तुमने अपनी मृत्यु को पार करके काम पूरा करने के लिए मेरे पास आए। तो उनको ये बात लग गई, हमको तो इतने लात घूसे पड़ते हैं डेली अपमान होता है लेकिन फिर भी हम नहीं जाते शरण में पूरी तरह से, क्यों, क्योंकि उनका उतना हो चुका पूर्व जन्मों से अंतःकरण शुद्ध है, अब थोड़ा जो बाकी था वो भी साफ हो गया पत्नी के माध्यम से उपदेश से, अब वो चले गए। ध्रुव महाराज भी ऐसे ही पूर्व जन्मों में नारद जी से जब किसी ने प्रश्न किया कि भगवान ने पक्षपात किया कि इनको 6 महीने में भगवत प्राप्ति करा दी, हम लोग लाखों वर्ष से कर रहे हैं, तब नारद जी उनको मंदराचल पर्वत के पास ले गए और उन्होंने कहा देखो कुछ दिख रहा है, हाँ ये बड़ा सा टापू दिख रहा है, एक टापू नहीं है ये ध्रुव महाराज के पूर्व जन्मों की जो तपस्या किया उससे जो बची हुई हड्डियों से बना ये टापू है। तो उनका अंतःकरण करते करते इस अवस्था में आए कि बस छुआ और बस भगवत दर्शन हुआ, 6 महीने में ही प्राप्ति हो गई। तो इसीलिए जो कृपा है वो ऐसे ही नहीं मिल जाती है, साधना करेंगे तो मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वो भगवान की कृपा से ही भक्ति मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन साधना अवस्था में साधना तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई मजाक करेगा तो उसको प्राप्ति नहीं, कृपा नहीं मिलेगी। हमने कई बार सुना डिसीजन तक नहीं पहुंचे, मजाक में लिया, इसलिए कृपा पूरी पूरी मिली नहीं। भगवान की कृपा मिली कि मनुष्य देह मिला, भक्ति करने की उनकी सेवा करने की इच्छा भी मिली और भक्तों का संग भी मिला। ये त्रयमेव एतद् दुर्लभम, इस संसार में 3 ही चीज तो दुर्लभ है, मनुष्य का देह और मोक्ष की भक्ति की भावना, भगवान की सेवा की और महापुरुष संभव, और मनुष्य अच्छे महापुरुष भक्तों का संग, ये 3 ही दुर्लभ है और चौथी कोई चीज है नहीं। अब तीनों मिला है, अब हमको अपनी कृपा अपने ऊपर करना है, अपने मन को, क्योंकि मन हमारा है भगवान का नहीं है, भगवान ने हमको शक्ति दिया, बढ़िया खाते पीते भले चंगे हैं, अब यदि नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ होगा। अब इस मन को लगाने में एक समस्या आती है, ये मन नहीं लगता है। तो मन को लगाने के 2 तरीके बताए हैं शास्त्रों में, एक तो यहीं पर बताया कि बार बार भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण करने से लगेगा। दूसरी बात, ये आध्यात्मिक उपाय, भौतिक उपाय क्या है, तो वेद में लिखा है छांदोग्य उपनिषद में, उद्दालक वारुणी ने अपने पुत्र श्वेत केतु को उपदेश किया, 7वें अध्याय के 26वें खंड का 2 मंत्र है कि आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति और स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। पहले कहा कैसे, पिताजी से क्वेश्चन किया आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आहार से मन शुद्ध होता है, तो उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल कराए, तो उन्होंने बोला कि देखो जो आहार माने अन्न जल और तेज 3 ही हम लोग खाते हैं, तेज माने घी आदि, तो कहते हैं अन्न में 3 भाग होते हैं, अन्न को खाया तो स्थूल रूप से मल आदि बनकर के निकल गया, मध्यम भाग जो होता है उससे शरीर में मांस मतलब वीर्य बनता है, और जो अति सूक्ष्म भाग होता है उससे मन बनता है, माने मन पुष्ट होता है, मन तो पहले से है पुष्ट होता है उस दिशा में, इसलिए हिंदी बोलते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो कहते हैं उन्होंने बहुत सारी बातें समझाई, खाली इतना समझना है कि आहार शुद्धि भी आवश्यक है। 56 भोग यदि खाएंगे भगवान का लगा हुआ, जितने बड़े बड़े संत हुए वो भगवान का जो भोग निकला प्रसाद उसको प्रणाम करके तुलसी लेकर के और जो वो लोग खिचड़ी आदि बनाते थे वो खा करके साधना करते थे। क्योंकि जितना आप अधिक खाएं, क्योंकि हमारी अभी प्रसाद बुद्धि नहीं है, अभी इंद्रिय तृप्ति बुद्धि है, इसलिए हमको लगता है हम बढ़िया बढ़िया खाएं, तो ऐसी इच्छा होने पर इंद्रियां और पुष्ट होंगी और जितनी गर्म होंगी इंद्रियां उतनी विषयों में दौड़ेंगी। इसलिए एक उपाय ये भी है मन को नियंत्रित करने का कि आहार में बहुत विचार रहे, भैंस आदि का दूध ना पिया जाए, गाय का पिए, कुछ लोग भैंस का तो नहीं पीते लेकिन अमूल बटर अमूल क्रीम सब डाल डाल खाते हैं, तो भैंस का बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सात्विक मन को बनाना है, वो आहार सात्विक है, तभी सत्व शुद्धि होगी, तभी ध्रुवा स्मृति होगी। सत्व आहार करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा, हृदय जब शुद्ध होगा तो जो भगवान के विषय में सुने हैं नाम रूप गुण लीला ये हमको स्मरण रहेगा अधिक समय तक, हम भूल जाते हैं, और जब ये स्मरण रहेगा तो अपने आप भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम हम लोग जा सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने समझाया। प्रभुपाद ने लिखा कि भजन करने वाले एक भजनानंदी साधु एक गोष्ठानंदी दो प्रकार के होते हैं। तो भजनानंदी में जो केवल भजन करते हैं वो आत्म कल्याण में लगे रहते हैं, और गोष्ठानंदी जो क्या करते हैं गोष्ठी बनाते हैं, मतलब अपना तो खुद करते हैं और जगह जगह जाकर के उनका भी उद्धार करते हैं, लेकिन गोष्ठानंदी सावधान रहें, क्योंकि आप यदि तैयार नहीं होंगे पूर्णतया प्रचार के लिए तो आप किसको कैसे उद्धार कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, खुद ही फंस जाएंगे। हमारा निश्चय हो जाना चाहिए कि हाँ प्रचार अभी जो है भगवान के कीर्तन के जैसे समझना, लोगों के सामने भगवान कथा बोलना, जिससे हमारा भी शुद्ध होगा या सामने वाले का भी, अपने आप को महापुरुष नहीं समझना, तब उसमें प्रचार में आगे बढ़ेंगे। तो गोष्ठानंदी के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कई लोग भजनानंदी लोगों की निंदा कर देते हैं, वो कर रहे हैं तो करने दो उनको अपना, किसी की भी स्वभाव और गुणों का निंदा प्रशंसा नहीं करना है, चाहे वो साधु हो चाहे असाधु हो। पर स्वभाव कर्माणी न प्रशंसे न गर है, भागवत 11:28:1 भगवान कहते हैं किसी भी व्यक्ति के चाहे वो साधु हो या न हो उसके प्रसन्न दोषों और गुणों की चिंता नहीं करना, वो प्रकृति से बना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन समय का यहाँ पर अभाव है। बस इतना समझना है कि संसार में जो दुखी है उसके लिए प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए, अब हम अपने लिए यदि ना करें तो फिर सब बेकार है। इतने सारे महापुरुषों का संग हुआ है और इसके बाद भी यदि हमारी कामना अभी भी कृष्ण में सुख है ऐसा डिसीजन ना हो करके विषयों में है, ये बार बार बीच बीच में आता है, हम सबके मन में आता है, तो उसको इस डिसीजन को पक्का करना है कि नहीं वो जो आनंद है जो मैं खोज रहा हूँ विषयों में वो कृष्ण में ही है और उनसे ही चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में ऐसा आनंद की इच्छा रहेगी, लेकिन जब उच्च स्तर में पहुंच जाएंगे तब प्रेमानंद भी नहीं, केवल सेवा की इच्छा रह जाएगी बस। दारुक भी एक बार ऐसे भगवान को चामर गोलोक में ऐसा झुला रहे थे, तो झुलाते झुलाते उनको बहुत मजा आने लगा, तो कहते हैं दारुको पिनाभ्यनंदत, तो दारुक ने भी अपनी प्रशंसा ने के बोला रे ये क्या हो गया, मैं भगवान के सुख की इच्छा को छोड़ करके अपनी सुख की कामना में डूब गया। तो इसीलिए भक्ति की उच्चतर अवस्था ये याद रखना चाहिए, बस ये डिसीजन हो जाएगा तो ये श्लोक प्रहलाद महाराज का हमारे लिए काम करेगा और सार्थक ही रहेगा। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। किसी कोई क्वेश्चन?
ना प्रभु, आपने बताया कि हमें स्मरण कीर्तन और श्रवण तीनों साथ में करने चाहिए, लेकिन
साथ में कर सकते हैं, कोई अलग अलग भी करते हैं कोई साथ में, क्योंकि जब आप बोलेंगे भगवान का नाम तो आपका मन यहाँ वहां ना जाए, इसलिए भगवान को देखें। संचिंतयेत भगवत शरण अरविंदम, भागवत में कहा ना 3:28:21 में कि भगवान के उसका ध्यान करना चाहिए ताकि मन ना जाए, नहीं तो आप कहीं यहाँ वहां मुंह से गाएंगे लेकिन ध्यान कहीं और रहेगा, इसलिए मन को स्थिर लगाने के लिए।
हमें प्रभु भक्तों से जो निर्देश मिलता है तो भक्त बताते हैं कि जब हम हरिनाम जप करते हैं जब हमें भगवान के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ सुनने पे हरि नाम सुनने
मैंने
पे।
मैंने क्या बोला कि नाम को सुनना और रूप को ध्यान लगाना मन से, वो दोनों एक ही चीज है। चाहे नाम रूप, प्रभुपाद ने चेतन चैतन्य में जो मध्य लीला है उसमें एक जगह लिखा है कि कोई व्यक्ति अकेला भी नाम का केवल याद कर सकता है और नहीं, क्योंकि नाम में बोला ना शब्द रूप में है ना, अक्षर है, तो उसमें उतना आपको हो सकता है कि मन ना लगे, लेकिन जो रूप होता है भगवान का आप देखे क्यों, फिर इसको देख कर क्या, ये चित्र जो है भगवान का मन में बैठ जाए, ताकि विषयों के जो अन्य चित्र है वो मन में ना आए बार बार, इसके लिए तो दर्शन है। अंधों को इसका फायदा नहीं हो पाता, वो सुन करके उसका ध्यान करना चाहते हैं, तो इसीलिए रूप का तो जो नाम है आप जपो, आप नाम में लगा सकते हो, बोलो सुनो नाम को सुनो तो मन लग। कुल मिलाकर के भगवान ने क्या बोला कि माम अनुस्मरत चित्तम, बस कृष्ण में हो जाना चाहिए, यहां वहां नहीं हो मन। तो मन को नियंत्रित करने के अलग अलग विधियां हैं, आप नाम में कर सकते हो, बोलो और करो कोई बात नहीं, आप रूप करते हैं उसका भी कोई निषेध नहीं है।
तो प्रभु हरि नाम जप करने के दौरान यदि हम नाम के बजाय भगवान के विग्रह पे ध्यान करें तो वो
कोई
है?
समस्या नहीं है।
अच्छा,
कोई उसको बोलते वही तो है रूप ध्यान, क्या है अविस्मृति कृष्ण पदारविंद हो, अविस्मृति कृष्ण के पदारविंद की अविस्मृति वही तो है, तो मन तभी तो लगेगा। और किसी को, आपको तो सब पता है।
तो बलदेव जी आप चार मुख्य स्मरण बताए, नाम स्मरण रूप गुण, तो ये नाम स्मरण क्या है?
नाम स्मरण वही जैसे उन्होंने कहा ना कि हरि का नाम भगवान का हर समय चिंतन में आना, हरे कृष्ण ऐसा नाम का जो स्मरण है वो है हरे नाम जप्यम ध्येयम गेयम निरंतरम। तो उसी है गाना, और उसको जैसे आप खाली बैठे हैं किसी से बात करें अचानक स्मरण नाम जपना है, ऐसा नाम का स्मरण किया, और नाम का जैसे स्मरण करेंगे तो रूप लीला आदि धीरे धीरे करके विकास होता है।
वो तो सुनना हुआ ना, श्रवण हुआ नाम का,
स्मरण आपने, आप खाली बैठे हैं अभी इस समय चुपचाप, अब आपको है नहीं नाम जपना है, तो ऐसे नाम का आपने स्मरण अंदर अंदर कर रहे हैं, अंदर अंदर कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं, नाम का स्मरण हरे कृष्ण। कई बार आप जीव से नहीं भी बोले तो वो व्यक्ति कैसे नाम लेगा, तो वो अंदर से बोलता है मन से, क्योंकि मन में सारी इंद्रियां निहित होती हैं। कई बार हम लोग जैसे गायत्री जपते हैं तो अंदर अंदर मंत्र जप लेते हैं कि नहीं, जीव से नहीं बोलते हैं तो उसका वो होता है जप, तो वही जप पे चाहे जीव का प्रयोग करे करिए, चाहे मन से उस नाम का स्मरण करिए, ऐसा होता।
ये कहाँ लिखा है नाम स्मरण?
ये जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ के 275वें अनुच्छेद में जावाल दर्शन जावाली संहिता है उसका वो कोट किया है उसके विषय में। लेकिन जीव गोस्वामी ने एक बात और लिखी है कि इसका मूल में इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है नाम स्मरण का, तो इसीलिए रूप स्मरण के लिए उन्होंने चार पांच श्लोक बताए भागवत से।
तो नाम स्मरण कोई प्रोसेस है ही नहीं ना,
हा?
नाम श्रवण है,
नाम
एक ध्वनि है, साउंड,
वही साउंड का ही स्मरण।
आपने दो तीन बार कहा नाम शब्द नहीं स्मरण कर सकते, नाम एक ध्वनि,
उसमें सुना तो उसको उसमें लीला का अनुभव नहीं हो पाता है शब्द रूप अक्षर रूप होने के कारण से, तो उनका इसीलिए जीव गोस्वामी ने लिखा कि नाम स्मरण बहुत कठिन चीज है, क्योंकि उसका कोई उदाहरण नहीं दिया, तो उन्होंने लिख दिया कि वहां पर केवल इतना लिखा कि नाम का स्मरण करना है, लेकिन उसमें कोई उदाहरण दिया नहीं कैसे करना है, तो इसीलिए रूप का स्मरण पर विशेष जोर दिया जाता है।
दूसरी बात, अगर कोई बहरा आदमी कीर्तन में बैठ जाए उसको फायदा नहीं होगा?
जब बोलेगा यदि जो बहरा सुनेगा ही नहीं, जब उसको सुना ही नहीं पड़ा तो फायदा किस बात का,
तो नहीं होगा।
इस भगवत स्मरण में फायदा होता है ना, भगवत
बहरा आदमी कीर्तन में बैठ जाए तो फायदा होगा कि नहीं होगा,
आप बताइए। आप जब कोई बात सुन ही नहीं रहे तो उसका कैसे उसमें चिंतन जाएगा किसी भी व्यक्ति का, बहरा है यदि वो बहरा है जन्म से बहरा है,
हाँ।
तो भगवान के दर्शन करके वो लाभ ले सकता है उनका, और कैसे सीखेगा वो। अब व्यक्ति यदि बाद में बहरा हुआ तो जो स्मृति पहले की है उसको याद कर करके भाव भी बोल रहेगा, कीर्तन मुंह से बोल लेगा।
नाम जब प्रहलाद महाराज पेट में थे उनकी इंद्रियां तो सुनाई दे रहा था उनको,
दिव्य पुरुष जैसे गर्भ में बालक स्तुति करता है तो सारे बालक स्तुति थोड़ी ना करते हैं, किसी कोई कोई बालक करते हैं, तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज को विशिष्ट शक्ति प्रदत्त है नारद जी के द्वारा, तो उन्होंने श्रवण कर पाए, सारे व्यक्तियों में ऐसा सामर्थ्य नहीं होता है कि जो उसको समझ सके, प्रहलाद संग प्राप्त कर सके।
तो नाम का सामर्थ्य तो कान के ऊपर रह गया ना, नाम तो बिना कान के भी भक्त को शुद्ध कर सकता है,
अवश्य कर सकता है।
दोनों बात बोल रहे हैं
नहीं, आप बहरे व्यक्ति की यदि बात करेंगे
हाँ।
तो व्यक्ति जब सुना ही नहीं तो जो यदि उसको पूर्व जन्मों की स्मृति है तो उससे वो भगवान को स्मरण करेगा। जब व्यक्ति सुना उसी को तो बोलेगा। गूंगे व्यक्ति की एक पहचान है कि जो व्यक्ति जीवन में एक भी शब्द सुना ही नहीं तो वो एक भी शब्द बोल नहीं सकता है। जो जन्म से बिल्कुल गूंगा है वो एक भी नहीं बोलेगा, लेकिन जो बाद में गूंगा हुआ, कान में समस्या आई तो बोलना सीख गया तो बोलता रहेगा। हमारे वृंदावन में एक रिक्शा वाला है, उसको अब सुनाई नहीं पड़ता लेकिन कुछ कुछ बोलता है। तो सुनने की सामर्थ्य के साथ उसका संयोग मन के साथ होना चाहिए। अब इंद्रिय के साथ संयोग हुआ कहां नाम का। अब मैं यहां बोल रहा हूं, यदि कोई बहरा व्यक्ति होता तो भागवत क्लास सुन पाता नहीं, सुन पाता तो उसका उसको लाभ नहीं होता। केवल भक्तों को देखता कि ये क्या सुन रहे हैं क्या सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो वो व्यक्ति यदि नहीं सुन सकता है, अपूर्व जन्मों की स्मृति है, तो स्मरण करे भगवान का, लाभ तो वही है। चाहे कान तो साधन है हमारे श्रवण करने का। हम लोग स्वप्न में हमारा कान रहता है क्या, लेकिन हम स्वप्न में सारी बातें सुनते हैं कि नहीं, किसी के साथ घूम रहे हैं, वो कुछ बोल रहा है, हम कुछ सुन रहे हैं। तो इंद्रिय कान न रहने पर भी हमने स्वप्न में सारा संसार बना देते हैं। तो इंद्रिय अकेले मन सब काम कर सकता है यदि उसको पूर्व जन्मों की स्मृति हो तो, उस बहरे को। अन्यथा नया नया यदि कोई भी शब्द सुना नहीं तो बोल नहीं पाएगा ना उसका, या स्मरण कर पाएगा। और यदि वो स्मरण कर रहा है तो समझना चाहिए कि वो बिना सुने, इस जन्म में नहीं सुना, पूर्व में सुना हुआ है, और उसको किसी भक्तों के स्पर्श से चरणों की तुलसी को सूंघ करके, जैसे सनत कुमारों को स्मरण हुआ या केवल भगवान के चरणों की तुलसी सूंघ करके, तो उससे क्या हुआ, स्मृति आ गई और नाम लेने लगे।
ठीक है, हम बाद में चर्चा करेंगे।
हाँ?
धन्यवाद।
अरे प्रभु जी भी आए, आपको कुछ बोलना है तो आप भी।
मैं भी क्लास सुन रहा था और यही मेरे पास भी यही था। देखिए, ये एक्सेप्शनल है कि जो लोग पूर्व जन्म में श्रवण किए हैं वो इस जन्म में, वो एक्सेप्शनल है, सबके लिए नहीं है। जैसे जोगो नष्ट बिजायते सुनताम, यू नो जो श्लोक है ना, कुछ नाम श्रीमता आ गए हैं जोगो नष्ट बिजायते। लेकिन जनरल रूल है वह है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवण पहले है, नवदा भक्ति में प्रहलाद महाराज श्रवण को प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे भी देखा जाए, साइंस भी स्वीकार करता है। हनुमान थोड़ा तो मोटा है, साइड हटो ना अभी थोड़ा। साइंस भी इस बात को मानता है और एक्सपीरियंस भी है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसका कान पहले काम करता है, और जब व्यक्ति मरता है तो अन समय तक काम करता है। राम नाम सत लोग बोलते हैं ना, ताकि अभी भी उसका उद्धार हो जाए। जब शरीर जल जाता है तो काम बंद कर देता है। तो इसलिए श्रवण को प्रथम भक्ति कहा गया है। तो बलदेव ने ठीक कहा जो कहा, एक्सेप्शनल केस है, लेकिन जनरल केस है कि हम लोगों को सुनना चाहिए। जब श्रवण करेंगे तब कीर्तन कर सकते हैं।
वामदेव ऋषि हुए, वामदेव, वो माँ के गर्भ में ही उनको दिव्य ज्ञान हो गया बिना सुने किसी से। बस एक कर्म बाकी था जो माँ के गर्भ में जाना बाकी था, लेकिन ज्ञान वही हो गया बिना सुने।
वो पहले सुने थे।
हाँ, वही तो, जो पूर्व में जिसने सुना
तो
है।
सुनना पहला भक्ति है। तो वो ये वामदेव एक्सेप्शनल हैं। हमने से कितने लोग वामदेव यहाँ पर है, कोई बैठा है यहाँ पर? वामन देव जाम के पेड़ पर चढ़ता है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो सुनना जरूरी है। श्रवण प्रथम भक्ति है, स्मरण ऑफकोर्स श्रेष्ठ है, देयर नो डाउट। इसीलिए क्रम बनाया गया है। छोटा बच्चा कहीं अगर गाली देता है तो माँ पूछते कहाँ सुन लिया, तो जब सुनता है तब गाली देता है। ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म का है। चतुर्भुज जब सुने तब मोबाइल बंद कर दिए। तो सुनना जरूरी है।
जीव गोस्वामी ने वो आदव श्रद्धा जो बोला है कि श्रद्धा कैसे होगी, तो आदव शब्द के अर्थ में लिखा है कि श्रवण, सबसे पहले पूर्व जन्म में श्रवण किया होगा तो ही श्रद्धा।
श्रद्धा का मतलब है साधु संग।
हाँ, तो वो
साधु संग, साधु संग का मतलब है श्रवण।
ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। धन्यवाद देवकिरण प्रभु एंड गोकुलेश्वर प्रभु।